श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका यूरोपियन इतिहास के नए अध्याय में। हमारे नए अध्याय का नाम है प्रथम महायुद्ध। अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, प्रथम महायुद्ध। यह अध्याय हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम महायुद्ध अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्टिड रसेल ने लिखा है कि यूरोप के राजतंत्रों ने फ्रांस की क्रांति को नष्ट करना चाहा और नेपोलियन पैदा किया। नेपोलियन ने प्रसा को नष्ट करना चाहा और फिक्टे को जन्म दिया। फिक्टे से बिस्मार्क तक की यात्रा एक सहज विकास का रूप है। बिस्मार्क ने फ्रांस को कुचलना चाहा और वहाँ की नस नस में ऐसी भावना पैदा कर दी जिससे प्रतिहिंसा पैदा हुई और विद्वेष और घृणा से प्रथम महायुद्ध का सूत्रपात हुआ। सेदा के युद्ध के बाद फ्रांसीसी साहित्यकार विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि आज से इन दो राष्ट्रों फ्रांस और जर्मनी पर नज़र रखनी चाहिए, इन्हीं के द्वारा भविष्य निर्धारण होगा। और यह सच है कि प्रथम महायुद्ध का एक प्रत्यक्ष कारण इन्हीं दो देशों के बीच का वैमनस्य था। हालांकि प्रथम महायुद्ध के कारण पहले के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में स्पष्ट हो गए हैं, परंतु इन कारणों को एक ओर औद्योगिक विकास के संघर्ष में देखना होगा तो दूसरी ओर यूरोप के बढ़ते अविश्वास के कारण शस्त्रीकरण और तनाव के विस्तार के रूप में। ब्रिटिश विदेश मंत्री ग्रे ने बारूद के ढेर पर आसीन यूरोप को देखकर अपने अंतिम दिनों में बड़े दुख के साथ कहा था, चारों ओर चिराग बुझते जा रहे हैं और अपने जीवन में उन्हें फिर जलते देख पाना संभव नजर नहीं आता। यह निराशा अकारण नहीं थी। यूरोप में जन्म से राष्ट्रीय बने राज्य तब थे जब उनमें परस्पर संघर्ष भी जारी रहे। उनके पहले रियासतों में आपसी झगड़े होते रहते थे, लेकिन ये झगड़े सीमित दायरे में थे। 16वीं शताब्दी के राज्यों का नया स्वरूप सामने आने पर 30 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्रांति से आई राष्ट्रीय चेतना के बाद युद्धों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह नेपोलियन के पतन के बाद ही समाप्त हुआ। इन दोनों बड़े युद्धों से भी बड़ी घटनाएं 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देशों में उत्पादन का तेजी से मशीनीकरण शुरू हुआ था। उत्पादन के नए तरीकों की स्थिति यह है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने की स्थिति शीघ्र पैदा हो जाती है। यह उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था, इसलिए यह उपभोक्ता की आवश्यकता और उसकी क्रय क्षमता को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि मुनाफे को ध्यान में रखकर नियंत्रित होता था। मुनाफाखोरी मूल्य के सिद्धांत से भी जुड़ी होती है। यह विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं में बाधा नहीं जा सकता। निर्यात तथा एक सीमा तक आयात भी अनिवार्य हो जाते हैं। निर्यात व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्वभाव और उसके नियामक तत्वों के अनुसार हो सकता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होती है क्योंकि सभी उत्पादक अपना माल खपाना चाहते हैं। इससे बचने का महज एक तरीका था, एकाधिकार। यह एकाधिकार बिना राजनीतिक सत्ता के संभव नहीं था। इसलिए 19वीं शताब्दी के बढ़ते औद्योगिकरण के साथ यूरोपीय राज्यों की नीति विस्तारवादी होती जा रही थी। पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद को अनिवार्य बना दिया था। इस पूंजीवादी विकास में ही एक अंतर्विरोध निहित था। इसे कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में ही अपने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर देखा था। औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड की शक्ति का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। तब भी इंग्लैंड ने नेपोलियन जैसे पुनरापंथी शक्ति को तोड़कर ही दम लिया। यूरोप में भी जब औद्योगिक विकास शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने यूरोप से अपने को खींच लिया और औपनिवेशिक साम्राज्य को दृढ़ करने लगा। लेकिन जब यूरोप में इंग्लैंड जैसी की आर्थिक शक्ति पैदा हो गई तो प्रतिस्पर्धा ने बढ़कर संघर्ष का रुख का स्वरूप अख्तियार कर लिया। 1918 तक चलने वाले महायुद्धों में 30 वर्षीय युद्ध से कई गुना अधिक विनाश हुआ तथा इतिहासकार फिशर के अनुसार इस महायुद्ध में पुरानी दुनिया जलकर खाक हो गई और फिर से निर्माण आवश्यक हो गया। इस युद्ध का थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करने पर ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसके कारण क्या थे और विश्व के लगभग सभी देशों में देश इस युद्ध में शामिल क्यों होना पड़ा। धीरे धीरे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। 16वीं शताब्दी से ही राष्ट्रवाद ने राजनीतिक शक्ति के रूप में पनपना शुरू कर दिया था। नेपोलियन के पतन के बाद सारे यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से उभर रहा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद इस स्पर्धा में तेजी आई। अब तक स्पर्धा स्थानीय स्तर की थी, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनके हित विश्वव्यापी हों। लेकिन औद्योगिक क्रांति का विस्तार होते ही हितों का विस्तार हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस ही नहीं, छोटे देशों ने भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ अलग करने की तैयारी में थे। यह हवा एशिया तक पहुंची और जापान की आक्रामक राष्ट्रवादिता इसका प्रमाण था। इसी उत्कृष्ट राष्ट्रवादी चेतना के फलस्वरूप हर देश अपनी नीति के अतिरिक्त दूसरे पक्ष को किसी तरह न्यायोचित मानने को तैयार नहीं था। सवाल मानने का ही नहीं, हर कीमत पर अपनी बात मनवाने का भी था। एक तरफ वे राष्ट्र थे जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के विस्तार के बारे में सोचते थे, दूसरी ओर ऐसे राष्ट्र थे जो अपनी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे। अब भी दूसरे देश ऐसे भी थे। इटली अभी भी उत्तर और पूर्व के एड्रियाटिक सागर तक अधिकार के बावजूद अपने को अपूर्ण मानता था। उसका असंतोष प्रायः क्षोभ और आक्रामकता में बदल रहा था। फ्रांस बिस्मार्क द्वारा छीने गए अलसास और लॉरेन वापस चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बालकन प्रायद्वीप में थी, जहां राष्ट्रीयता का विकास उग्र हो गया था। वहां नवोदित राष्ट्रों में कोई भी संतुष्ट नहीं था। यूनान का एक हिस्सा अभी भी तुर्क के कब्जे में था। वहां थ्रेस और एजियन द्वीपों को वापस लेकर प्राचीन बाइजेंटाइन साम्राज्य की गरिमा प्राप्त करना चाहता था। सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना और ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व मिटाने के लिए सब कुछ करने पर आमदा था। बल्गारिया की भी थ्रेस, मेसिडोनिया के एक भाग पर और एजिनन द्वीप पर नजर थी। रुमानिया, ट्रांसविलिनिया और बेसारेबिया क्षेत्र में रह रहे रुमानिया लोगों के कारण इन्हें अपना समझता था। इस तरह बालकन में सभी असंतुष्ट थे। अब तुर्क साम्राज्य के विद्रोह उनका पुराना क्षेत्र नए प्रतिद्वंदियों ऑस्ट्रिया और रूस के विरुद्ध होता जा रहा था। विशेष रूप से ऑस्ट्रिया का बोस्निया और हर्जेगोविना पर जबरदस्ती कब्जा सर्बिया और ऑस्ट्रिया के संबंधों को विस्फोटक बना रहा था। इस प्रकार राष्ट्रीय सीमाओं की अस्पष्ट परिभाषा और हक से यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त थी। रूस के 25 स्वतंत्र देशों में सभी अपने को सार्वभौम समझते थे और सार्वभौमिकता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता। नासमझ लोग इसी अर्थ में व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता का तात्पर्य ग्रहण करते हैं और अपने राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय नियम या अनुबंध स्वीकार नहीं था। स्पष्ट था कि अपनी सत्ता के अतिरिक्त किसी और की सत्ता मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का यह रूप खतरनाक भी सिद्ध हो सकता था। इन सभी बातों के पीछे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक विकास का प्रसार और पूंजीवादी साम्राज्यवादी अर्थतंत्र की अपनी अनिवार्यता थी। बढ़ती औद्योगिक प्रतियोगिताओं के उपनिवेशों का महत्व कई कारणों से बढ़ गया था। उपनिवेशों के उद्योगों के लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। उपनिवेशों में बाहरी प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगाकर और आंतरिक विकास की संभावनाओं को समाप्त कर न केवल कच्चा माल मनमानी कीमत पर खरीदा जा सकता था, बल्कि उत्पादन और विक्रय नियंत्रण करके निश्चित भी किया जा सकता था। इस प्रकार उन्हीं बाजारों में अपने उपभोग के बाद शेष बचा हुआ माल मनमानी कीमत पर किसी प्रतियोगी के बिना बेचा जा सकता था। इस क्रम में पूंजी का विस्तार अनिवार्य था। अपने देश के उपयोग के बाद जो पूंजी बचती उसे फिर कहीं लगाया नहीं जाता तो मुद्रा क्षेत्र में अराजकता फैलती थी। इसलिए उपनिवेशों में अतिरिक्त पूंजी लगाकर वहां नियंत्रित रूप से औद्योगिक उद्योग शुरू किए जा सकते थे। उपनिवेशों में खाद्य पदार्थ जुटाए जा सकते थे क्योंकि सीमित श्रम का उपयोग खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जितना लाभप्रद नहीं था उतना औद्योगिक कार्यों में। दूसरी बात यह कि यूरोप के अधिकांश देशों में भूमि इतनी उर्वर नहीं थी कि वे खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। उपनिवेशों में जितना सस्ता श्रम उपलब्ध था उतना अपने देशों में संभव नहीं था। इसलिए अपने देश में श्रम के बढ़ते मूल्य को उपनिवेशों के सस्ते श्रम से संतुलित रखा जा सकता था। इस प्रकार अब अनिवार्य होते गए थे इस प्रकार उपनिवेश अब अनिवार्य होते गए थे लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के अधिकांश भागों पर यूरोप की पुरानी शक्तियों का आधिपत्य हो गया था। जो नई शक्तियां उभर रही थी उन्हें भी हिस्सा चाहिए था। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, यहाँ तक कि स्पेन और पुर्तगाल भी उपनिवेशिक साम्राज्य थे। इटली और जर्मन के लिए बाजार समाप्त हो गए थे। उपनिवेशों की अथवा अपने सामान्य बाजार की तलाश आवश्यक थी। पुराने बाजार में स्पर्धा और संघर्ष अनिवार्य होता जा रहा था। 1892 के अंत में इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित पत्र इकोनॉमिक रिव्यू में लिखा गया कि यदि कल जर्मनी का विनाश हो जाए तो परसों ही कोई अंग्रेज न होगा, न ही पहले से अधिक धनी हो जाएगा। इंग्लैंड ने बढ़ते हुए जर्मन के प्रति विरोध का इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा। इसका कारण बढ़ती हुई आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी। इस संदर्भ में विभिन्न राष्ट्रों पर राष्ट्रनीति को भी देखना चाहिए। रूस कोई औद्योगिक आधार दिए बिना भी बाल्कन में पुरानी विस्तारवादी नीति बढ़ाना चाहता था। रूस के जारों का सपना था कस्तुतुनिया पर अधिकार कर काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले दोनों जलडमरुओं के माध्यम से भूमध्य सागर तक पहुंच जाना। इस प्रकार अपनी घुटन मिटाने के लिए अस्थाई बंदरगाहों को प्राप्त कर लेना। इस कार्य में बाल्कन के राष्ट्र व्यवधान बन सकते थे। लेकिन पहले तो जर्मन देशों की प्रतिद्वंदिता से निपटना था। जर्मन देशों के लिए पश्चिम या दक्षिण के विस्तार संभव नहीं था। उत्तर में बाल्टिक सागर था, अब पूरा भी बसता था। इसलिए विशेषकर ऑस्ट्रिया के विस्तार की नीति अपनाई गई। इससे एक ओर बाल्कन के अग्रणी देश सर्बिया से नोकझोंक शुरू हो गई और तनाव बढ़ता गया। जब विलियम ने रूस के तीनों सम्राटों के संघ के लिए किए गए समझौते को समाप्त कर दिया तो रूस में भी तनाव स्पष्ट हो गया। हम देखेंगे कि प्रथम महायुद्ध की शुरुआत भी इसी तनाव के कारण हुई। ऑस्ट्रिया की प्रतिस्पर्धा रूस से बढ़ रही थी। दोनों ही पुरानी परिभाषा के सामंती साम्राज्य थे। आधुनिक साम्राज्य जर्मनी औद्योगिक देश बनता जा रहा था। उसकी इंग्लैंड तथा फ्रांस से मुठभेड़ जरूरी थी। इससे बचने के लिए बिस्मार्क हर कीमत पर फ्रांस को एकाकी बनाए रखना तथा इंग्लैंड से मैत्री रखना जरूरी समझता था। उसने गुप्त संधियों का सिलसिला आरंभ कर दिया जिसका हम पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी की गुटबंदी जिसमें किसी भांति इटली भी शामिल था फ्रांस के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गई। फ्रांसीसी कूटनीति बढ़ते दबाव, रूस के जर्मनी द्वारा अपमानित होने तथा ब्रिटेन का एकाकीपन असंभव हो जाने के कारण फ्रांस, इंग्लैंड और रूस का एक दूसरा गुट पैदा हुआ। इस गुट में सैनिक समझौते तो नहीं थे परंतु ये भी अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं लड़ने और दूसरे की मदद करने के लिए कृत संकल्प थे। ऐसी स्थिति में दो गुट परस्पर संकालु और शत्रु बन गए। वे रक्षा के लिए आक्रमण की नीति अपनाते जा रहे थे। नतीजा यह था कि शस्त्रीकरण तेजी से बढ़ रहा था। 1990 और 1907 के बीच यूरोप में एक कूटनीतिक क्रांति हुई जिसने बिस्मार्क के कार्यों को नष्ट कर दिया। प्रसा यूरोप में अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध वहां का राष्ट्रीय उद्योग समझा जाता था। फ्रेडरिक विलियम और फ्रेडरिक महान के समय से ही यह परंपरा शुरू हुई थी और 19वीं शताब्दी में नेपोलियन के विरुद्ध पुनर्जागरण आंदोलन ने प्रशा की सेना को बहुत बल दिया था। मोल्टके और फानरून ने उसे एक जुझारू फौज बना दिया। बिस्मार्क के युद्धों ने सिद्ध कर दिया था कि प्रशा की फौजें कितनी संगठित और लड़ाकू हैं। यह क्रम जर्मन साम्राज्य के में ही बना रहा। यद्यपि 1870 के बाद बिस्मार्क ने कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन अपनी सेना निरंतर तैयार रखी और उसे शक्तिशाली बनाता गया। विज्ञान की उन्नति से सेनाओं के हाथ और मजबूत हुए। जर्मन इतिहासकार ट्राइटस्के ने स्पष्ट कहा है, जैसे जर्मनी की महानता का आधार जर्मनी का प्रशा द्वारा शासित होना है, वैसे ही विश्व की महानता और भलाई के लिए जर्मन संस्कृति, जर्मन मस्तिष्क, एक शब्द में जर्मन चरित्र की सर्वोच्चता जरूरी है। अब जर्मन शक्ति का आतंक पढ़ा तो अन्य देशों ने सैनिक कार्रवाइयाँ बढ़ाने लगे। प्रशा में अनिवार्य भर्ती की योजना अन्य देशों में भी अपनाई जाने लगी। प्रशा की सेना को आधार बनाकर देश में राष्ट्रीय सेना संगठित होने लगी। प्रतिद्वंद्वता सबसे तेज नौसेना के क्षेत्र में थी। जर्मन नौसेना बड़े बड़े युद्ध तोपे बना रही थी और बंदरगाह सैनिकों का गढ़ बनते जा रहे थे। इंग्लैंड ने अपनी नौसेना का भारी सशस्त्रीकरण और विकास शुरू कर दिया। फ्रांस और इटली भी पीछे नहीं छूटना चाहते थे। कुल मिलाकर पहली बार यूरोप में सामरिक तैयारी समुद्रों की छाती से भी अधिक तेजी से उभरता जा रहा था। इस नीति का विरोध भी हो रहा था, लेकिन इससे कर बढ़ रहे थे और आम आदमी पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। ब्रसफोर्ड नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक द वार ऑफ स्टील एंड गोल्ड में कहा है कि सैनिक तैयारी बढ़ाने से युद्ध और निकट आता चला जा रहा था, पर कौन सुनता उसकी। वैसे भी बुद्धिजीवियों की राजनीति पर कम ही प्रभाव होता है। सारे यूरोप में शांति के सभी प्रयास आंदोलनों का रुख अख्तियार कर रहे थे। हर देश में शांति आंदोलनों के लिए समितियां बननी हुई थीं। इटली में 55, इंग्लैंड में 22, फ्रांस में 36, अमेरिका में 17, यहां तक कि लैटिन अमेरिका में 7 और ऑस्ट्रेलिया में 4 ऐसी संस्थाएं काम कर रही थीं। सारी दुनिया के प्रख्यात बुद्धिजीवी अपना समय और धन शांति के कार्यों में लगाने में व्यस्त थे। रूही साहित्यकार टॉल्स्टॉय, स्वीडन वैज्ञानिक फ्रांसीसी बुद्धिजीवी कोंस्टान, अंग्रेजी लेखक एचजी वेल्स और अमेरिकी धनाढ्य कार्नेगी इस दिशा में सबसे आगे थे, लेकिन इनके प्रयासों की राजनीति और राजनेताओं पर कोई असर नहीं था। असर पड़ा था जार निकोलस पर। उसने रूस की आदर्शवादी परंपरा बनाए रखने के लिए हेग में सम्मेलन बुलाए। इन सम्मेलनों में प्रस्ताव पारित हुए। निशस्त्रीकरण को जरूरी बताया गया। अनिवार्य मध्यस्थता की बात की गई, लेकिन ये ऊंची आवाजें खोखली थी, क्योंकि यहाँ सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ था, नीतियों का नहीं, और इन सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने की कोई गारंटी नहीं थी, न कोई मजबूरी थी। परिणाम यह हुआ कि हेग की घोषणाएं शांति के लिए नखरखाने की तूती की आवाज बनकर रह गई। ऐसा नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से समझौते हो ही नहीं रहे थे। ओबामा के झगड़े का निपटारा हुआ, अर्जेंटीना और चिले की सीमा विवाद सुलझ गए, यहाँ तक कि मोरक्को संकट वार्ता और सम्मेलन से भी टाला गया था, लेकिन इसकी संभावना कम होती जा रही थी। कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि लाखों की अस्थायी सेना और उससे भी अधिक सैनिक कार्यों के लिए तैयार किए गए लोग एक प्रकार की मानसिकता बना रहे थे जिसे सैन्यवाद कहते हैं। सैन्यवाद को एवार्ट ने ऐसी प्रवृत्ति कहा है जो युद्ध को राष्ट्र और व्यक्ति के लिए उदात्तीकरण तथा परिष्कार का माध्यम बना देती है। इससे राष्ट्रीय सम्मान के लिए युद्ध एक उपकरण लगने लगता है और आक्रामक युद्ध की बात करने वाले लोग ही हीरो बन जाते हैं। ऐसी मानसिकता बनाने और बढ़ाने में उन उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ है जो शस्त्र का निर्माण करते हैं या जिन्हें ठेके या आपूर्ति के माध्यम से युद्ध में लाभ हो सकता है। ऐसी मानसिकता युद्ध को धीरे धीरे अनिवार्य बना देती है। इसी कारण राजनेता को अपने को आवश्यक रूप से और आक्रामक बनाकर कूटनीतिक लाभ उठाना चाहते थे और किसी भी कीमत पर ऐसा काम करने को तैयार नहीं थे जिससे उनके देश का तनिक भी नुकसान होने का आभास हो जाता। हर देश दूसरे को आक्रमण की तैयारी में रत मानकर स्वयं रक्षात्मक तैयारी कर रहा था। इस तरह ऐसा दुष्चक्र चल पड़ा था जिससे सभी एक दूसरे को आक्रामक लग रहे थे। साहित्य और इतिहास के माध्यम से भी इस संदेह आक्रामकता को सही और अन्य को गलत समझने की प्रवृत्ति को नियंत्रित या समाप्त करने के बजाय उसे बढ़ाया जा रहा था। शिक्षा से ऐसी पीढ़ी पैदा हो रही थी जो अपने अतीत के अनुप्राणित होकर अपने राष्ट्र की लालसाओं के प्रति जुड़ी थी। राष्ट्रहित ही सही गलत के निर्धारण का मापदंड बन गया था। साहित्य में राष्ट्र का गौरवगान हो रहा था। इतिहास अपने देश को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। राष्ट्रीय ही नहीं जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ जातियों जैसे यहूदी के विरुद्ध वातावरण तैयार हो रहे थे। समाचार पत्र प्रधान साधन बन गए थे। कुल मिलाकर राष्ट्रवादी बुखार से पीड़ित जनता और राष्ट्र सरकार को पर्यायवादी समझने लगे। और अपनी सरकार की आलोचना और उनकी नीतियों का विरोध राष्ट्र का विरोध समझने लगी थी। ऐसी स्थिति में स्वस्थ विवेचन संभव नहीं था। अंत में यह स्पष्ट था कि युद्ध के लिए हर देश दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा था। आज भी बहुतरे इतिहास जर्मनी या इंग्लैंड फ्रांस या तीनों को और विलियम द्वितीय जैसे शासकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन लेनिन ने उस समय घोषणा कर दी थी कि यह साम्राज्यवाद के आंतरिक अंतर विरोधों का परिणाम है और विभिन्न साम्राज्यवादी देश अपने मुनाफे के लिए दूसरे का और सबका ध्वंस करने को आतुर हैं। इसी विस्फोटक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में महायुद्ध के तत्कालिक कारणों को समझा जा सकता है। बाल्कन में वैसे तो कई तरह की प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन महायुद्ध के पहले दो बार बाल्कन प्रायद्वीप खून से नहा चुका था। यहाँ के नवोदित राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सशंकित थे। वहाँ ऑस्ट्रिया विरोधी रुख बढ़ाता जा रहा था। बोस्निया और हर्जेगोविया पर ऑस्ट्रिया का किसी भी तरह कोई दावा नहीं था। जब बिस्मार्क की कूटनीति ने उन्हें ऑस्ट्रिया को सौंपा तो विशेष रूप से सर्बिया, जो उन्हें अपना समझता था, बहुत पीड़ित हुआ। अब ऑस्ट्रिया ने इन देशों का पूरी तरह अपने साम्राज्य में विलय कर लिया तो सर्बिया में आक्रोश बढ़ रहा था। उसे रूसी प्रोत्साहन मिल रहा था। जार निकोलस ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह सर्बिया के लिए सब कुछ कर सकता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया बल्गारिया जैसे देशों को सर्बिया के समानांतर खड़ा करना चाहता था। बाल्कन लिंक भंग हो जाने से रूसी कूटनीति को धक्का लगा था और ऑस्ट्रिया प्रोत्साहित हुआ था। इसी तरह तुर्की के सुल्तान के सुधार कार्यक्रमों ने उसकी राजनीति को यूरोप में तनाव का केंद्र बना दिया था। उसने एक अंग्रेज को अपने देश की वित्तीय समस्या हल करने के लिए आमंत्रित किया था। एक फ्रेंच व्यक्ति तुर्की की पुलिस का पुनर्संगठन कर रहा था और एक अंग्रेज नौसेना संभाले हुए था। इसी के साथ सुल्तान ने एक जर्मनी को तुर्क सेना के पुनर्गठन का भार सौंपा। रूस में हाय तौबा मच गई। रूसी विदेश मंत्री साजोफोनोस तो इस मामले पर युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन जब इंग्लैंड और फ्रांस से प्रोत्साहन नहीं मिला तो रूस अकेले कुछ नहीं कर सका। बाल्कन हर तरह से आंकड़ा बन चुका था। यूरोप की स्थिति 1914 तक ऐसी यह थी कि खुलेआम युद्ध की केवल तैयारी ही नहीं हो रही थी, युद्धों की बातें भी की जा रही थी। रूस में जर्मनी और अपने साम्राज्य के विनाश की बात दोहराई जाने लगी। फ्रांस में कहा जाने लगा कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार होना चाहिए। जर्मन सम्राट इन बातों का फायदा उठाकर अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, अब भी जिसे रूस और फ्रांस की आक्रामकता पर अविश्वास हो उसे पागलखाने भेज देना चाहिए। बर्लिन की हालत देखकर कर्नल हाउस ने लिखा कि एक चिंगारी विस्फोट के लिए काफ़ी होगी। पेरिस की हालात देखकर जर्मन राजदूत ने लिखा, शांति एक दुर्घटना की दया पर निर्भर है। आखिर वह चिंगारी भी शोला बनकर भड़की, दुर्घटना होकर रही। वह हुआ यह कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिसी फर्डिनेंड ने सराजेवो की यात्रा करने की ठानी। वहाँ की स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। किसी भी ऑस्ट्रियाई अधिकारी की यात्रा खतरे से खाली नहीं थी। बोस्निया भर में बृहद सर्बिया का आंदोलन तेजी पर था और गुप्त संगठन जैसे नेशनल डिफेंस तथा यूनियन फॉर डेथ बहुत सक्रिय थे। पहले भी फर्डिनेंड की हत्या की तैयारी हुई थी, लेकिन अब तो वह शेर के मुख में स्वयं आ रहा था। तीन व्यक्तियों को अच्छी तरह तैयार करके सराजेवो भेजा गया। 28 जून 1914 को राजकुमार टाउन हॉल में अपने अभिनंदन समारोह के लिए जा रहा था, तभी उस पर बम फेंका गया। इस बार वह बच गया, लेकिन लौटती बार एक व्यक्ति उसकी कार पर ही कूद पड़ा और उसके प्रहार से राजकुमार और उसकी पत्नी मारे गए। स्तब्ध ऑस्ट्रिया ने इसे सर्बिया को सबक सिखाने का मौका समझा। जर्मनी से सलाह मांगने पर उसे हर तरह का वादा मिला। दोनों को मालूम था कि रूस सर्बिया की ओर से हस्तक्षेप कर सकता है, फिर भी सर्बिया को अल्टीमेटम दिया गया। सर्बिया ने शत्रुतापूर्ण रुख अपना रखा है और उसे अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए ऑस्ट्रिया विरोधी नीति की निंदा करनी चाहिए। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सक्रिय संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए। पाठ्यक्रमों से ऑस्ट्रिया विरोधी पाठ समाप्त कर देने चाहिए। सर्बिया को ऑस्ट्रिया की मदद से दमन करके षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करवाना चाहिए और उन दो अफसरों को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिनके नाम अल्टीमेटम में चर्चा की गई थी। इसका उत्तर 48 घंटों में मांगा गया था, यह असंभव था। मित्र राष्ट्रों ने समय बढ़ाने की मांग की, पर ऑस्ट्रिया नहीं माना। अंत में समय रहते सर्बिया ने सभी बातें मान ली, सिवाय इसके कि ऑस्ट्रियाई अधिकारी सर्बिया में दमन कार्य में हिस्सा न लें। इसे कोई भी सार्वभौम देश स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने सारा मामला हेग के न्यायालय के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया। सर्बिया का उत्तर इतना समझौतापूर्ण था कि इस मामले पर युद्ध होने का कोई कारण ही नहीं था। यहाँ तक कि जर्मन सम्राट ने भी मान लिया कि अब युद्ध का आधार नहीं रह गया। ऑस्ट्रिया ने नहीं माना और सर्बिया से संबंध तोड़कर सर्बिया की सीमाओं पर सेना एकत्र करनी शुरू कर दी। सर्बिया इस स्थिति के लिए तैयार ही था। ऑस्ट्रिया में खुशी की लहर दौड़ रही थी, मानो कोई विजय पर्व मनाया जा रहा हो। रूस भी समझ रहा था कि अब ऑस्ट्रिया से निपटने का अंतिम अवसर आ गया है। ब्रिटिश मंत्री चाह रहे थे वे देश जो सीधे बाल्कन से नहीं संबंधित हैं, अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली से मिलकर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता करें। रूस में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अब सैनिक संधियों के गुल खिलना शुरू किया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर हमला कर दिया। रूस ने सर्बिया की मदद की तथा फ्रांस भी रूस का पक्ष लिया। इतिहासकार फे ने रूस द्वारा की गई सेना की लामबंदी को युद्ध का मुख्य तात्कालिक कारण बताया। अब जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और धीरे धीरे सारे यूरोप में युद्ध विलोचता चला गया। ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी मांगी। फ्रांस ने ऐसा कर दिया, लेकिन जर्मनी ने जब बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रायः सारा यूरोप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गया। उपनिवेशों को भी इसमें शामिल होना पड़ा। जब अमेरिकी तटस्थता के बावजूद जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज डूबने शुरू कर दिए तो अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ा और युद्ध विश्वव्यापी हो गया। जर्मनी को पूरब और पश्चिमी देशों से लड़ना पड़ रहा था। जर्मनी ने तेजी से फ्रांस पर कब्जा करके सारी शक्ति युद्ध के विरुद्ध लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन फ्रांस में घुसने के बाद उसे सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड पूरी ताकत से फ्रांस के साथ था। लाख कोशिश के बावजूद जर्मन सेना पेरिस तक नहीं पहुंच पाई। पश्चिम में अब आमने सामने की भयंकर लड़ाई शुरू हुई। पूरब में जर्मनी ने रूस को बुरी तरह परास्त किया, लेकिन रूसी सेना ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सफल हो रही थी। जर्मन सहायता न पहुंचती तो यहां तक नौबत आ गई कि ऑस्ट्रिया को युद्ध से अलग होना पड़ता। इसी समय तुर्की ने जर्मनी की ओर से युद्ध में प्रवेश किया और रूस को काला सागर के रास्ते अपने मित्र की सहायता मिलनी बंद हो गई। तुर्की को इस समय मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में बुरी तरह हारना पड़ा। 1915 में एक ओर बल्गारिया ने जर्मनी गुट का साथ दिया तो दूसरी ओर उसी गुट के सदस्य इटली ने अपने गुट के साथ विश्वासघात करके राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। इसी समय मदद न मिल पाती तो ऑस्ट्रिया सेनाएं इटली पर कब्जा कर लेती। इस तरह मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बाल्कन में न पहुंच पाती तो यूनान जर्मन की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता। एक तरफ सारा यूरोप धू धू करके जल रहा था और युद्ध निर्णायक तौर से काफ़ी दूर नजर आ रहा था, दूसरी ओर सामुद्रिक युद्ध भी शुरू हो रहा था। इंग्लैंड ने जर्मनी की नाकेबंदी कर दी। सारी लड़ाइयों के बावजूद जर्मनी यह नाकेबंदी नहीं तोड़ सका। इसी बीच जर्मनी ने पनडुब्बियों का आविष्कार कर लिया था। उसने इस नए उपकरण का इस्तेमाल कर इंग्लैंड की नाकेबंदी शुरू कर दी। इंग्लैंड के व्यापार को बड़ी क्षति पहुंची। व्यावसायिक जहाज बड़ी तादाद में डुबाए जाने लगे। युद्ध के नशे में जर्मनी ने अंधाधुंध सामुद्रिक लड़ाइयाँ शुरू कर दी। पनडुब्बियों के विरुद्ध शस्त्रों की खोज चल रही थी कि जर्मनी ने तटस्थ देशों के भी जहाज डुबोने शुरू कर दिए। तभी अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए औपचारिक रूप से तटस्थ था, लेकिन जब अमेरिकी जहाज भी डुबाए जाने लगे तो उसने जर्मनी को चेतावनी दी। 1917 में एक अमेरिकी यात्री जहाज लुसिटानिया अटलांटिक महासागर में डुबो दिया गया। क्षुब्ध अमेरिका के लिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अमेरिकी सेनाएं यूरोप में उतर गईं। अमेरिकी नौसेना ने मित्र राष्ट्रों के साथ सक्रिय सहयोग करना शुरू कर दिया। अब अमेरिकी सेना और अर्थतंत्र मित्र राष्ट्र की सहायता के लिए तैयार था। इससे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। 1917 में ही रूस में ऐतिहासिक क्रांति हुई, जिसका अध्ययन हम अलग से करेंगे। ब्रेस्ट लिटवालोस्क की संधि के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। जर्मनी का एक मोर्चा समाप्त हो गया और वह सारी ताकत पश्चिम में लगा सकता था। युद्ध का निर्णायक दौर शुरू हुआ। दोनों ही पक्ष अंतिम लड़ाई लड़ने लगे। एक तरफ अमेरिकी मदद थी, दूसरी तरफ ब्रिटेन उपनिवेशों के सैनिक और जुटाए धन। विशेष रूप से भारत का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। भयंकर गोलीबारी के विनाश का रूप बढ़ता जा रहा था। युद्ध के अंतिम दिनों में हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल होने लगा था। जमीन और पानी और हवा तीनों क्षेत्रों में युद्ध लड़ा जा रहा था। सामान्य जनता बुरी तरह युद्ध के लपेट में आ गई थी और हताहत हो रही थी। जर्मन जनता के संकट का अंत नहीं था। उसे युद्ध और नाकेबंदी दोनों का शिकार होना पड़ रहा था। बल्गारिया और तुर्क परास्त हो चुके थे। ऑस्ट्रिया और जर्मनी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जर्मनी सारी शक्ति लगाने के बावजूद जीते हुए प्रदेशों को छोड़ने पर मजबूर हो गया। अंत में जर्मन सीमाएं भी आक्रांत हो गईं और ऐसा लगा कि जर्मनी की जमीन पर विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएंगे। विलियम द्वितीय के सपने ध्वस्त हो गए। उसका विरोध भी बढ़ने लगा। उसके सामने भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके भागते ही जर्मनी में हमेशा के लिए राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। युद्ध समाप्त हो गया और विस्तृत संधि की वार्ता की तैयारी होने लगी। युद्ध के समाप्त होने पर संपूर्ण विश्व में खुशियां मनाई गईं, लेकिन युद्ध के परिणाम बहुत धीरे धीरे सामने आए। समझदार लोग देख रहे थे कि युद्ध का परिणाम नए युद्ध के बीज बो रहा था। साम्राज्यवादी युग समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए कुछ लोग 1919 में कहने लगे थे कि युद्ध 20 साल के लिए टल गया। प्रथम महायुद्ध के परिणाम। श्रोताओं, प्रथम महायुद्ध के क्या परिणाम हुए, यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पर परीक्षाओं में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर। इस युद्ध का सबसे प्रत्यक्ष रणनीतिक परिणाम हुआ कि तीन साम्राज्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस समाप्त हो गए। सारे विश्व में राजतंत्रों के विरुद्ध हवा चल गई, क्योंकि जर्मन गुट में केवल राजतंत्रों का ही बोलबाला था। मित्र राष्ट्रों में गणतंत्रों की प्रधानता थी और युद्ध में प्रजातंत्र की रक्षा का नारा दिया था। प्रजातंत्र विजयी भी हुआ, लेकिन उसे नैतिक बल मिला। लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्रों का खोखलापन तब स्पष्ट होने लगा जब उन्होंने अपने उपनिवेश आज़ाद नहीं किए और उनका शोक स्वरूप कायम रहा। प्रजातंत्रों की अराजकता से ही युद्ध के बाद के दिनों में इटली में फासिज्म और जर्मनी में नाजीवाद का उद्भव और विकास हुआ। युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान राष्ट्रवादिता के सिद्धांतों का दोनों ही गुटों ने इस्तेमाल किया था। युद्ध के इसी सिद्धांत को यूरोप के बाहर लागू करने की साम्राज्यवादी देशों ने साफ इनकार कर दिया। उदाहरण के लिए, भारत में आशातीत सहयोग के बावजूद रॉलेट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला बाग का भीषण कांड हुआ और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन नहीं किए गए। इस तरह पश्चिमी देशों का प्रजातांत्रिक मुखौटा उतर गया और सारे एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में राष्ट्रवादी शक्तियों का आंदोलन तेजी से विकसित होने लगा। दुनिया के उन देशों को अब विश्व की राजनीतिक महत्व मिलने लगा जिनकी चर्चा तक नहीं होती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब यूरोप के देशों के वैदेशिक संबंध तक सीमित नहीं रह गई। इसके अतिरिक्त दो अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। अमेरिका की वास्तविक शक्ति का उद्घाटन हुआ और उसे दुनिया की महान शक्ति माने जाने लगा। प्रथम महायुद्ध के बाद चाहे अनचाहे उसकी विश्वव्यापी भूमिका बनी रही। हार्डी के अनुसार यूरोपीय व्यवस्था के स्थान पर एक विश्व व्यवस्था अनिवार्य हो गई और इस व्यवस्था में कुछ देशों की पहले जैसी मनमानी नहीं चल सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था यूरोप के दौरान रूस में हुई क्रांति से एक सर्वथा नए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की स्थापना। रूसी समाजवादी व्यवस्था ने पहली बार समाज में आमूल परिवर्तन से शोषण पर आधारित समाज को समाप्त कर दिया। अब दुनिया के सामने एक विकल्प था। धीरे धीरे दुनिया में समाजवादी आंदोलन बढ़ने लगा और दुनिया की राजनीति में पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। दुनिया के शोषित प्रताड़ित देशों में आशा की एक नई किरण पैदा हो गई। अब देशों में न केवल नए सिरे से प्रेरित थे और उन्हें बल मिला। सारी दुनिया में जन आंदोलनों का विस्तार हुआ और पश्चिम देशों की भी शोषित जनता अपने अधिकार की लड़ाई तेज करने लगी। साहित्य संस्कृति पर भी रूसी क्रांति का दूरगामी और अस्थायी प्रभाव पड़ा। युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व स्पष्ट हुआ। इतिहास ने सबक दिया था कि होली अलायंस और यूरोपीय व्यवस्था जैसे सहयोग कारगर नहीं होता, इसलिए व्यापक स्तर पर सहयोग की शुरुआत हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की प्रेरणा और पहल से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। यद्यपि राष्ट्रसंघ को बहुत सफलता नहीं मिली, फिर भी ऐसे संगठन की अनिवार्य आवश्यकता स्पष्ट हो गई। छोटे स्तर पर सहयोग को महत्व दिया जाने लगा और गुप्त संधियों की नीति के घातक परिणामों के कारण खुली कूटनीति का प्रारंभ हुआ। युद्धकाल में तेजी से औद्योगिकरण हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राजनीति में ही अधिक यथार्थवादी आधार पर आर्थिक क्षेत्रों में शुरू हुए। व्यवसाय अब अनिवार्यतः अंतर्राष्ट्रीय हो गया। किसी देश का अर्थतंत्र राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि बाजार का स्वरूप इतना व्यापक हो गया कि हर देश का आयात निर्यात अन्य देशों के व्यापार पर निर्भर रहने लगा। परिणाम यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और नीति निर्धारण होने लगे। श्रमिक वर्ग की स्थिति पर भी क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। युद्धकाल में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था, उसे रोक देना असंभव था। उसका स्वरूप भले ही बदल गया लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था। इसलिए मजदूरों की संख्या के साथ उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी। रूस में मजदूरों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद अन्य देशों के मजदूर चुप नहीं रह सकते थे। उनका आंदोलन आक्रामक होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महत्व बढ़ने लगा। मजदूरी, श्रम के लिए अनुकूल स्थितियां, बीमा, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इन सुधारों ने मजदूर आंदोलनों को कमजोर बनाने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों को अपनी ताकत और महत्व का पता लग गया था। जहां तक संभव था वे सुधार की नीति का उद्देश्य समझने लगे। मजदूरों की तरह युवा आंदोलन को बहुत बल मिला। सारी दुनिया में युवा और विद्यार्थी अब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे। युद्धकाल की मजबूरियों ने नारी को रसोई से निकलकर कल कारखानों और दफ्तरों में पहुंचा दिया। नारी स्वतंत्रता आंदोलन को इससे बहुत बल मिला। धीरे धीरे उसे राजनीतिक अधिकार मिलने लगे और उसे पुरुषों के बराबर समझे जाने लगा। विमेन लिब आंदोलन की वास्तविक पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही बनी। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए परिणाम शीघ्र ही स्पष्ट हो गए, लेकिन सांस्कृतिक जगत में कम महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। शिक्षा का स्वरूप बदलने लगा, साहित्य में नई धारा बहने लगी और छोटे नाटकों और कहानियों को बड़े उपन्यासों और नाटकों के स्थान पर अधिक पढ़ा जाने लगा। चिंतन की मूल धारा युद्ध और हिंसा के विरोध में समाजवादी और मानवतावादी हो गई। एक तरफ निराशा, अन्य मनस्कता और पलायनवाद का असर था, दूसरी ओर राष्ट्रवादी और समाजवादी धारा भी प्रफहमामी होने लगी। जीवन का कोई भी क्षेत्र युद्ध से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। म्यूर का विचार है कि प्रथम महायुद्ध इतिहास की पहली घटना थी जिससे न केवल दुनिया के लोग संबद्ध थे बल्कि वे जानते थे कि वे संबद्ध हैं। म्यूर ने बढ़ती चेतना की ओर इशारा किया। यह सच है कि प्रथम महायुद्ध के बाद जागरूकता और कुछ लोगों की संपत्ति नहीं रह गई। इस युद्ध ने अधिकांशतः निराशा व्याप्त कर दी थी। इस हताशा और नैराश्य को स्पेंगलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में और काफ्का ने विवादास्पद उपन्यास कास्फा ने विवादास्पद उपन्यास मेटामास्फर में अभिव्यक्ति दी। लगता था कि धरती पर मानव समाज की प्रगति के दिन लद गए। मनुष्य अब तिलचट्टा जैसा हो गया था। दूसरी ओर रूसी क्रांति ने सारी दुनिया के मेहनतकशों के नए सिरों को जीजी विषा भर दी। साहित्य और संस्कृति की अपेक्षा कमजोर पर एक सुनिश्चित धारा और आशा के संकल्प के साथ बढ़ने लगे। श्रोताओं, इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है।